घर परिवार।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम घर परिवार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में जीवन साथी बनाने और जीवन साथी के चयन के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
ये बात स्पष्ट है कि हर आदमी अपने जीवन में गलतियां करता है, और यदि आप अपने जीवन साथी को महत्व देते हैं और उसके साथ स्थायी एवं मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, चाहे वो बातें जिनमें आपकी गलतियां थीं या वो बातें जिनमें आप दोनों की ही गलतियां रही हों। दूसरी ओर अपने जीवन साथी की गलतियां दोहराने के बजाय अपने सकारात्मक व्यवहार को और अधिक मजबूत करना चाहिए। यदि आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं तो ये आपके लिए सबसे सुंदर और अच्छा क्षण होता है और आप अपने दिल की बात कह सकते हैं।
यदि आप वास्तव में अपने जीवन साथी को पसंद करते हैं तो उसे अपनी भावनाओं को समझाना चाहिए और अतीत को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका अतीत आपको परेशान करे। अतीत को भूलना आसान नहीं है, किंतु यदि द्वेष और ईर्ष्या को अपने से दूर कर लें और अतीत की घटनाओं पर तनिक भी ध्यान न दें तो ये संभव है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जीवन साथी आपके साथ है। इस सुंदर व हसीन पल को अपने अतीत की यादों से बर्बाद नहीं करना चाहिए।
परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई समझी जाती है और परिवार में जिंदगी तथा मौत का पहिया घूमता ही रहता है। घर में जीवन की सही राह की पहचान और उसको बचाकर सही राह की ओर ले जाने के लिए व्यापक एवं संगठित रोड मैप की आवश्यकता होती है, ताकि परिवार के सदस्य प्रेम और मोहब्बत के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें और इस पवित्र इकाई को शांति तथा संतुष्टि का केंद्र करार दें। इस विषय के महत्व के दृष्टिगत कुछ समय पहले इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने परिवार की एक नीति निर्धारित की थी जिसके 16 अनुच्छेद हैं।
ये नीति पारिवारिक ढांचे की मजबूती और रक्षा के लिए बेहतरीन दस्तावेज और रोडमैप के रूप में पास हुई। वरिष्ठ नेता की ओर से बयान की गई नीति में परिवार की केंद्रीयता वाले समाज को पैदा करने, इस्लामी आदर्शों के आधार पर परिवार को मजबूत करने, शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमताओं को एकजुट करने की आवश्यकता और पारिवारिक संबंधों और पारिवारिक आधारों को मजबूत करने के लिए संचार माध्यमों की भूमिका पर बल दिया गया है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने संस्कृति प्रचलित करने, सामूहिक रूप से परिवार द्वारा खाली समय को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने और परिवार से जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में सुधार एवं उसे पूरा करने के लिए परिवार को प्रयोग करने, परिवार को स्थिर करने में प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया और इस विषय पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की। कामकाज के बारे में भविष्य की चिंताओं को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था और परिवार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तथा विवाह और घर जैसे विषय भी इस नीति में पेश किए गए हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने परिवार की नीतियों में जीवन साथी की प्रतिष्ठा व सम्मान के समर्थन, माँ की भूमिका, महिलाओं के घरेलू काम करने और पुरुष के बाहर काम काज करने और आय पर बल दिया गया है। परिवार में बूढ़ों के सम्मान के लिए उचित समर्थन शैली अपनाने, परिवार की बहुपक्षीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने, विशेषकर आस्था की सुरक्षा तथा जल्द संतान की इच्छा के विषय पर बल दिया गया है। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता की ओर से परिवार के बारे में पेश की गई संपूर्ण नीति पर नज़र डालने से इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि इसमें एक जनरेटर परिवार बनाने और उसके लिए प्रयास किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
जनरेटर परिवार का अर्थ है वो परिवार जो प्रेम व मोहब्बत पैदा करने के साथ ही साथ सुरक्षा पैदा करे, वो परिवार जो नैतिकता और कानून पैदा करने के लिए प्रशिक्षण करता है, वो परिवार जिसमें काम काज पैदा करने और आर्थिक दक्षता पर ध्यान दिया जाए, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो परिवार जो संतान का इच्छुक है वो समाज की बुनियादें मजबूत रखता है।
व्यक्तिगत और निजी जीवन में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की शैली से पता चलता है कि वो परिवार के मूल्य और उसके महत्व पर बल देते हैं। वरिष्ठ नेता वो हैं जो परिवार के सम्मान, परिवार के लोगों के एक साथ उठने बैठने और जीवन साथी के सम्मान और आदर के जाने और उसकी रक्षा पर बल देते हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के छोटे भाई कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि जब वे मशहद आते हैं वे ननिहाल और ददिहाल के लोगों से मिलते हैं। ये चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास समय कितना है। कभी कभी एक साथ ही दोनों जगह चले जाते हैं या कभी कभी दोनों परिवार के लिए अलग अलग समय देते हैं, अर्थात विस्तृत मुलाकात करते हैं। कभी कभी दोनों परिवारों से एक ही समय में मिलते हैं, सभी एक साथ, पूरा परिवार एक साथ, सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं।
वे कहते हैं कि वरिष्ठ नेता के बच्चे भी इसी प्रेम और मोहब्बत के साथ जब भी आते हैं, 3-4 एक साथ आते हैं, चाहे तेहरान में मुलाकात तय हो, चाहे यहाँ पर मशहद में। वे भी बहुत प्रतिबद्ध है, बहुत अधिक सम्मान करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे जितना अधिक बड़े ही क्यों न हों, उनकी कृपा और प्रेम बहुत अधिक होता था।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता सैयद अली खामिनई की पत्नी श्रीमती मंसूरा खोजस्ते बाकिरजादे कहती हैं कि उनमें एक बहुत अच्छी विशेषता है जो दूसरों के लिए उदाहरण और आदर्श बन सकती है। वो ये है कि जब वे घर में होते हैं, यद्यपि वो प्रतिदिन के कामों से थकान में डूबे हुए रहते हैं, किंतु प्रयास करते हैं कि घर के वातावरण को समस्याओं से दूर रखा जाए। वो हर चीज़ से पहले ये चाहते हैं कि घर का माहौल शांतिपूर्ण, खुशहाल और स्वस्थ रहे। मैं समझती हूँ कि घर की शांति में उनकी सबसे अधिक भूमिका रहती है। ताकि वे शांति से अपना काम कर सकें, मैं भी उनको अपने और अपने बच्चों की चिंताओं से दूर रखने का प्रयास करती हूँ।
वो कहती हैं कि वरिष्ठ नेता का बेहतरीन गुण उनका साधारण जीवन है। वो कहती हैं कि हमने कभी भी अपने घर में सजावट की चीज़ें नहीं रखी। सुंदरता अच्छी चीज़ है, किंतु हमें सजावट में अपने जीवन को उलझाना नहीं चाहिए। हम संतुलित साज सज्जा वाले घर में रहते हैं। हमारे घर में महंगे कालीन, पर्दे, सोफे इत्यादि नहीं हैं। वर्षों पहले ही हमने इन सब चीज़ों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। वरिष्ठ नेता के माता पिता हमारे आदर्श थे। उनकी माता इस प्रकार की सुंदरता और साजो सज्जा की आलोचना करती थीं। मेरा भी यही मानना है, हम हमेशा अपने संतानों को सही सलाह देते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दिखावटी चीज़ें बेकार नजर आएं।
श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में हम दंपत्ति के संबंधों पर चर्चा करेंगे। एक महिला लिखती हैं कि मेरा पति बहुत बकवास करता है, मैंने जितना भी प्रयास किया उसके बावजूद उसके बुरे बर्ताव को मैं बदल ना सकी। सभी को वे बुरा भला कहते हैं, वे हर चीज़ और हर वक्त नाराज रहते हैं, वे गालियाँ बकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊँ। गुस्सा इंसान में एक स्वाभाविक सी बात है और हर इंसान में कम और ज़्यादा पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, महिलाएं रोने लगती हैं या दूसरों से बहुत अधिक बातचीत करती हैं, किंतु सामान्य रूप से पुरुष किसी से बात नहीं करते, कड़ा जवाब देते हैं और कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं।
यदि घर में ऐसा माहौल हो, अर्थात घर में गाली गलौज हो रही हो, तो इस समय आपको होशियारी और युक्ति से काम लेना पड़ेगा और इस प्रकार घर के जहरीले वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। बातचीत के केंद्र को बदलना इस माहौल को बदलने की एक शैली है। आप बात के विषय को बदल कर भी घर के माहौल को बदल सकते हैं।
कभी कभी स्थिति को छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता, क्योंकि जो आदमी बहस कर रहा है या जो गाली गलौज कर रहा है वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इन हालात में जगह छोड़ने से हालात किसी सीमा तक नियंत्रित हो सकते हैं। पैगंबर इस्लाम का एक कथन है कि गालियां देने से बचो, क्योंकि अल्लाह गालियां देने वालों को पसंद नहीं करता। यदि आपका जीवन साथी नाराज है या गालियां बक रहा है तो आप माफ़ी मांगकर मामले को रफा दफा करें और घर के माहौल को अच्छा बनाएं।